मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 3 दिनों के बाद मैं आप सभी का afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज मुझे लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत एक ऐसे विषय पर थोड़ा सा इनडायरेक्ट में बात करना चाहिए जिस पर अभी पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है और जबरदस्त रूप से जिसको लेकर के पूरा देश आंदोलित भी है और उत्साहित भी है। और मेरी समझ से विषय आप समझ गए होंगे, अभी जो करेंसी को लेकर मामला चल रहा है। मित्रों, मैं सीधे सीधे करेंसी पर नहीं आ रहा हूं, अगर मैं उस पर आ जाऊंगा तो वो तो हमारे फिर जनरल स्टडीज और एनालिसिस का विषय हो जाएगा। मित्रों, मैं इसके माध्यम से एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, या कह लीजिए कि दूसरी बात के माध्यम से मैं इस पहली बात पर आऊंगा। मित्रों, आइए हम थोड़े से अश्लीलता के बारे में बात करते हैं कि इनफैक्ट अश्लीलता क्या है। दोस्तों, सामान्य तौर पर तो अश्लीलता के बारे में आप सब जानते हैं और हम यही मान करके चलते हैं कि जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, जो सामूहिक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, जिसको देखने के बाद मन में जुगुप्सा का भाव पैदा होता है ना, उसको हम अश्लीलता कहते हैं, उसे अश्लील कहते हैं। राइट, फिल्मों के संदर्भ में यूज होता है, साहित्य के संदर्भ में यूज होता है, चेष्टाओं के संदर्भ में यूज होता है, काम के संदर्भ में भी यूज होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन मित्रों, एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन जापान के बहुत ही महान फिल्मकार हुए हैं जिनका मैं बहुत मुरीद हूं, अकीरा कुरोसावा, और जिनकी फिल्मों की चर्चा मैं अक्सर बीच बीच में कभी कभी कर दिया करता हूं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी और कुछ अलग तरीके की बात कही थी। दोस्तों, ये दुनिया के महान फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने कितनी क्लासिकल मूवीज बनाई हैं, और मजेदार बातें हैं, सोच के देखिए कि इसके बावजूद इनके फिल्म को फाइनेंस करने वाले लोग नहीं मिलते थे, क्योंकि ऐसे फिल्मों को देखना वाला कौन पसंद करता है। तो मित्रों, इन्होंने अपने शिष्यों से, अपने साथ काम करने वाले नौजवान साथियों से एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे नौजवान साथियों, तुम मौज करो, खूब मौज करो, खूब आनंद मनाओ, खूब उत्सव मनाओ, लेकिन याद रखो कि जब कोई भी चीज हद से बाहर चली जाती है तो वह अश्लील हो जाती है। दोस्तों, यह बात उन्होंने कही कि खूब मौज मस्ती करो, खूब उत्सव मनाओ, खूब जितना भी चाहो करो, लेकिन याद रखो कि जब कोई भी चीज मर्यादा से बाहर हो जाती है, लिमिट से बाहर हो जाती है, हद से बाहर हो जाती है, तो वह अश्लील हो जाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अश्लीलता की इससे खूबसूरत परिभाषा, इससे ज्यादा सटीक, एप्रोप्रिएट और व्यावहारिक परिभाषा मुझे अब तक पढ़ने को, सुनने को, समझने को नहीं मिली। और जब मैंने इस पर विचार करना शुरू किया तो मैं दंग रह गया कि बात तो केवल छोटी सी एक लाइन में कही गई है, लेकिन उसका गहराई जो है वो अनंत है, अथाह है। मित्रों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा कि अभी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जिसे हिंदी में कहा जाने लगा है, नोटबंदी। 8 तारीख की रात में प्राइम मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की और आज हम 15वें तारीख में पहुंच गए हैं। आज 15 नवंबर 2016 है। दोस्तों, इस बीच में आप सुन रहे हैं अलग तरह की परेशानियां हो रही हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, बहुत लोग साथ भी दे रहे हैं, कहीं निराशा का भाव है, कहीं उत्साह का भाव है, कहीं आलोचना का भाव है, कहीं प्रशंसा का भाव है। और जब आप इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो ये होना बहुत स्वाभाविक भी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मित्रों, आइए हम इस पर जो बात कर रहे हैं और करने जा रहे हैं उसका कोई संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि चीजें राजनीति से जोड़ी जाती है। हम जो बात कर रहे हैं वो केवल दो संदर्भों में, एक राष्ट्र से है, देश से है, और दूसरा हमारे अपने चरित्र से भी है, जिसे मैंने अश्लीलता से जोड़कर बात कही है। दोस्तों, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि खासकर 1991 के बाद से हमारे पूरे के पूरे समाज में एक नया धनिक वर्ग उभर कर आया है। नया धनिक वर्ग का मतलब है कि जो बहुत जल्दी धनी बना है और काफी पैसा उसके पास तेजी के साथ काफी पैसा है। धनी बनना अपने आप में कोई अपराध नहीं है और बल्कि पूरा देश पूरी दुनिया भी इसी कोशिश में है कि कैसे हम अपने पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सके, उसे धनी बना सके। मित्रों, लेकिन इसके साथ संकट जो हुआ है वो दो संकट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हुआ। पहला तो ये है कि कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के पास बहुत आसानी से पैसा आ गया, बहुत आसानी के साथ। जैसे जमीन में देखिए, रेट्स बहुत तेजी से बढ़े, जिसे हम रियल एस्टेट कहते हैं, तो बहुत आसानी के साथ पैसा आ गया। किसान शहर के आसपास रहने वाले क्षेत्रों में देखिए कि पता लगा कि किसान ने एक एकड़ जमीन बेची और उसके बदले में उसको 50 लाख रुपए मिल गए, जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता था। तो इनके हाथ में, इनको छोड़िए, इनके बच्चों के हाथ में बहुत जल्दी नया पैसा आ गया। और दूसरी बात यह है कि बिना कुछ किए आ गया, कुछ नहीं किया गया है, यानी कि श्रम पर आधारित ये धन नहीं है, यानी कि कोई क्रिएट करके हमने ये पैसा नहीं कमाया है, ये तो पहले से किसी ने क्रिएट कर दिया था और कुछ अर्थव्यवस्था ने ऐसी करवट ली, ऐसी उछाल भरी कि ये पैसा आ गया। तो मित्रों, इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या कि जब हमारे पास धन बहुत आसानी से आ जाता है और बहुत जल्दी में बहुत सारा आ जाता है, तब फिर ये संभाले नहीं संभलता। मतलब ये धन का आना भी यूं कह लीजिए कि एक तरीके से मर्यादाओं को तोड़कर आना है। अदरवाइज आप देखिए कि एक पेड़, आम के पेड़ को लगाइए, तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप उसमें जल्दी फल लगा सकें, वो अपना वक्त लेगा। अभी हमारे किसान गेहूं की फसल बो रहे हैं, वो अपने वक्त में ही उसमें बालियां आएंगी, गेहूं निकलेगा, लेकिन धन के साथ ऐसा नहीं है। तो मित्रों, श्रम नहीं लगा, जल्दी में आया और बहुत सारा आया, तो इसने धन को एक इतने ज्यादा अलग स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हमसे फिर संभाले नहीं संभला, अब हम क्या करें। तो जब इस तरीके से धन आया तो उसके उपभोग के मामले में भी हमने कहीं मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमारे हाथ में आ गया है, तो हमने उसका बेहिसाब इधर उधर कहीं भी किसी भी तरीके से उपभोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब क्या करेंगे। उसमें बहुत सा पैसा तो ब्लैक मनी का ही है, आप उसे बैंक में नहीं रख सकते, क्योंकि जमीन बेची 50 लाख रुपए की, या कमाई जिस माध्यम से भी हो रही हो, मतलब ये नहीं कि मैंने जमीन का तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है, हर तरफ से यही हुआ, बैंक में रख नहीं सकते, तो क्या करें, अब आपको खर्च करना है। तो आप देखिए कि देखते देखते बाजार का जो दृश्य था वो बदल गया। आप बाजार के दृश्य को कभी देखिए, किताबों की दुकानें गायब हो चुकी हैं, हाँ दवाइयों की दुकान खूब सारी खुल रही हैं, जिम जो श्रम के आधार पर शरीर बनना चाहिए था वो जिम के आधार पर बन रहे हैं, खूब सारे जिम खुल रहे हैं, खूब सारे स्पा खुल रहे हैं, खूब सारे इस तरह के रेस्टोरेंट खुल रहे हैं जिसमें चाय की एक प्याली आपको 50 रुपए की मिलेगी, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं जहां समझ लीजिए आपको 150 रुपए का 100 ग्राम खाने को मिलता है, वो जो मक्के को आप भून देते हैं वो खाने को मिलता है, नाम में जानबूझ कर नहीं ले रहा हूं, 150 रुपए का 100 ग्राम और लाइन लगी हुई है, लोग खा रहे हैं। जब भी फिल्म में इंटरवल होता है आप जाकर के देखें, आपको आसानी के साथ नहीं मिलेगी, अगर आप उसको लेने के चक्कर में पड़े तो आपकी फिल्म छूट जाएगी, 150 रुपए में हम वो सब खा रहे हैं। तो मित्रों, ये है आसानी से आए हुए श्रम विहीन पैसे का एक तरीके से मर्यादा विहीन उपभोग। तो दोस्तों, यहां दोनों चीजें हम मर्यादाओं के परे जाकर देख रहे हैं। सच पूछे मित्रों, तो ऐसे दृश्यों को देख करके, ऐसे माहौल में हम लोगों को कभी अपना वक्त याद आने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा वक्त कोई बहुत ही सतयुग का वक्त था या बड़ा अच्छा वक्त ही था, लेकिन लगता है कि इतनी ज्यादा मर्यादा विहीनता तो नहीं थी, कहीं ना कहीं आंखों की शर्म थी, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता था, मेहनत करनी पड़ती थी, इतनी तेजी से भी नहीं आता था। और मन में यह भी भाव रहता था कि अगर ये पिताजी का पैसा है तो ये हम देखते थे कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया है, तो उसके प्रति हमारी एक अलग तरीके की निष्ठा भी होती थी। और चूंकि उनके प्रति निष्ठा होती थी तो उस धन को खर्च करने के प्रति भी एक निष्ठा होती थी, भले ही मेरे पास खर्च करने के लिए कितना भी पैसा क्यों न हो। तो उस समय के बाजार का दृश्य अलग था। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 8 नवंबर को जो कदम उठाया गया है मित्रों, ये केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला कदम नहीं है, बल्कि मुझे एक संपूर्ण क्रांति इसमें दिखाई दे रही है, जो हिंदुस्तान के चेहरे को, चौतरफा चेहरे को बदलकर इतना खूबसूरत बना सकता है, बना देगा, जिसके बारे में अभी फिलहाल शायद लोग नहीं सोच पा रहे हैं। तो मित्रों, हम क्या करें, एक नागरिक के रूप में हम क्या करें, सच पूछिए। तो इस पृष्ठभूमि के बाद जो मैं अब कहने जा रहा हूं, उसी अपील के लिए ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से का मैं को समर्पित करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने पहले दिन कहा था कि यह बहुत साहसिक कदम है, आलोचना करना बहुत आसान है, फैसला करना बहुत मुश्किल है जो लिया गया है। इस बारे में मुझे लगता है कि हम भारतीय कहीं ना कहीं तो सौभाग्यशाली हैं कि किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्रांतिकारी कदम उठाया। मेरे शब्द याद रखिएगा मित्रों, कि अगर इस काले धन की समाप्ति को अंत तक अंजाम दिया जा सका तो फिर आप देखेंगे, एक समय अभी आप देख रहे हैं और चेतन रूप में देख रहे हैं, अभी आपकी उम्र ऐसी है कि इसको आप समझ लेंगे, और फिर आने वाले समय को भी आप देखेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं। उस समय मेरे इन शब्दों को याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक क्रांतिकारी कदम था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक आर्थिक यज्ञ है, सांस्कृतिक यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ है, और मैं अपने इस लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं से अपील करना चाहूंगा, तीन बातों की अपील, तीन एक्शन की अपील। अपील ये दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की भी चीजें अखबारों में आ रही, मीडिया में आ रही हैं, कहीं भी जा रही हैं कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी है, फलाना फलाना, वो तो देखिए होना ही है। अगर कैंसर हो गया है, और ये तो बीमारी कैंसर से भी कहीं ज्यादा बीमारी हमारी अर्थव्यवस्था को लग गई थी, तो कीमियोथेरेपी होती है, और कीमियोथेरेपी में आपको गुदगुदी तो नहीं होती है, वो दुख तकलीफ तो सब सहनी पड़ेगी, और कहीं उस कैंसर होने के लिए हम भी कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई बड़े अच्छे तरीके से बैठे हुए इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे थे तो रोकने की तो कोशिश नहीं की, और हम इस तरह से हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो कीमियोथेरेपी के उस दर्द को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि वो कैंसर हमें खत्म न कर दे, इससे ज्यादा बेहतर है कि हम इस कीमियोथेरेपी के दर्द को बर्दाश्त करें। मित्रों, आप सब युवा हैं, आपके सामने आने वाला भविष्य है, जिस तरह का समाज आज आप बना देंगे, आप उसी तरह के समाज को न केवल जिएंगे बल्कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ कर जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ा जो फायदा इसका मिलना है वो आपको मिलना है। तो मित्रों, मैं केवल तीन एक्शन की आपसे उम्मीद कर रहा हूं, ये मेरी आप अपील समझ लें। पहला तो यह कि अभी जब तक नोट को लेकर के बैंकों में, एटीएम में दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा बनने से बचाएं, कम से कम आप अपने लिए कर सकते हैं। आप उन सारे खर्चों में कटौती कर दीजिए जिन जो अभी इतने जरूरी नहीं है, जिनके बिना भी आपका जीवन चल सकता है, यानी कि जो आपके पास पैसे हैं, देखिए कि कैसे आप उसी से काम चला सकते हैं। मित्रों, यदि आपने कुछ दिन ये कर लिया तो यह आपको जीवन के एक नए रहस्य से परिचय कराएगा, और वो रहस्य यह होगा कि यार, इसके बिना भी मेरी जिंदगी चल सकती है, ऐसा नहीं है। अगर मेरे मोबाइल में अभी सिम नहीं है और सिम के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो करके रह के 10 दिन करके तो देखिए, रह के तो देखिए, आपको लगने लगेगा कि नहीं, बिना मोबाइल के भी मैं रह सकता हूं। जबकि अभी यह है कि मोबाइल नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में सांस चल नहीं रही हो। यह आपको संयम का पाठ सिखाएगा, आपकी जिंदगी से उन बोझ को, उन फालतू चीजों को की पहचान करा देगा और निकाल के बाहर फेंक देगा, जो अन्यथा बोझ बने हुए हमारी चेतना पर, हमारी पॉकेट पर, और पता नहीं किन किन चीजों पर। पहली बात, आप अपने खर्चों में कटौती करके देखिए कि लाइन में न लगना पड़े, बैंक में न जाना पड़े। दूसरी बात दोस्तों, यही संदेश आप अपने परिचितों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, यही संदेश पहुंचाएं कि थोड़े दिन की बात है, कोई तूफान नहीं आया है, कोई जलजला नहीं आया है, भूकंप नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़े से संयम और धैर्य की बात है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उनको समझाइए, वो भी शायद आपकी बात मानकर वही रास्ता अख्तियार करें। ये दोस्तों मेरी दूसरी अपील थी। तीसरी अपील मेरी मित्रों ये है कि यदि आप इतने सक्षम हैं तो जिनको वाकई इसकी जरूरत है, पैसों की जरूरत है, उनकी मदद कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कुछ खुले रुपए हैं या एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो जिनको जरूरत है उन्हें थोड़ा सा दे दीजिए, वो बाद में आपको लौटा देंगे। जो आपके पास पड़ोस परिचय में ऐसे लोग हों जो बूढ़े हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, महिलाएं हैं और दिव्यांग हैं जो बैंकों की लाइन में नहीं लग सकते, आप देखिए कि कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। मित्रों, हम निर्णय तो नहीं ले सकते इतने बड़े जितने कि बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन अपने बारे में और दूसरों के बारे में ये छोटे निर्णय तो ले ही सकते हैं, और यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर के मित्रों बहुत बड़ा निर्णय बन सकता है इस देश के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा टर्निंग प्वाइंट है, हमारे देश का एक ऐतिहासिक क्षण है, हम एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के दौर से गुजर रहे हैं मित्रों, और हमें चाहिए कि हम अपने इस ऐतिहासिक क्षण को एक परमानेंट काल में तब्दील कर दें। और इसके लिए मेरी यही छोटी छोटी आपसे तीन गुजारिशें हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब मेरी इस अपील का सम्मान करेंगे, मेरे इस अपील को व्यवहार में लाएंगे भी। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।